ఆత్మా జ్ఞానం స్వయం జ్ఞానం జ్ఞానాన్ని ప్రభావస్య కర్తాత్మా మోహయం వ్యవహార మంగళమయ మంగళకర వీకరాలు విజ్ఞానం నమోతా హి జాతే భయ హరిహంతా మహాన్ ఓం నమస్తే నమస్తే నమస్తే. समय दर्शन का विषय के लेख के ऊपर में अपना स्वाध्याय चल रहा है। बाबूजी ने आत्मा की अनुभूति जिस श्रद्धा की पर्याय में होती है वो किस तरह से आत्मा की अनुभूति करती है और ध्रुव की मंगलमय बस्ती में किस तरह से बस्ती है उसका जो आलेखन किया है ये अनुभूति के अलावा करना असंभव था। सर्वोत्तम के माध्यम से बहुत कुछ बात तो कही जा सकती है लेकिन सर्वांगीय वस्तु व्यवस्था जिस तरह से उभर के सामने आई है ये भी गुरुदेव के शासन में ऐसे पवित्र जीवों का आना, गुरुदेव के सानिध्य में रहना, अपने लक्ष्य को पूर्ण करना और गुरुदेव के बताए हुए पथ को पुष्ट करना, ऐसा उत्कृष्ट कार्य इस लेखों के माध्यम से हुआ है, यानी कि चैतन्य की चहल पहल के माध्यम से हुआ है। ध्रुव तत्व अंतिम पैराग्राफ जो हमने दोपहर में दिया था फिर वहीं से शुरू करते हैं। 42 प्रश्न से ध्रुव तत्व श्रद्धा के लिए मुख्य तत्व नहीं वरन उसका सर्वत्र ही है, इसलिए सम्यक दर्शन स्वयं अपने को मिटाकर ध्रुव का दर्शन करता है। वो अपने को गौण की कक्षा में भी नहीं रखता, वास्तव में अपने को बचाकर श्रद्धे को अपना समर्पण करने की वार्ता को एकदम छल एवं छद्म है। स्वयं को मिटाए बिना समर्पण का स्वरूप ही नहीं बन सकता, इसलिए सम्यक दर्शन की दुनिया में सम्यक दर्शन सजना वाली कोई वस्तु ही नहीं है। राधा ने जगत में राधा को कभी देखा ही नहीं, उसकी दुनिया कृष्ण की बनी थी। श्रद्धा के अनंत शून्यता में ही ध्रुव की मंगलमय बस्ती बसती है और इसलिए श्रद्धा का यह अद्वैत आनंद अनंत आनंदमय होता है। अब यहाँ तक की बात चली, अभी आगे बाबू जी क्या कहते हैं पढ़ते हैं बाबू जी के शब्दों में। इस पद्धति में आत्मा को मात्र ध्रुव मानने से उसमें पर्याय का अभाव नहीं हो जाता, वरन ध्रुव एवं ध्रुव की श्रद्धा पूर्ण एवं पूर्ण का अहम इस प्रकार दोनों अंशों की निर्देश पूर्णता में आत्म पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप पूर्ण ही बना रहता है। ये जो पद्धति बतलाई गई ऊपर में इसके अंदर में आत्मा को मात्र ध्रुव मानने से उसमें पर्याय का अभाव नहीं हो जाता, पर्याय का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, वरन ध्रुव एवं ध्रुव की श्रद्धा, ध्रुव माने चिकाली भगवान आत्मा और ध्रुव की श्रद्धा माने श्रद्धा की पर्याय पूर्ण एवं पूर्ण का अहम इस प्रकार दोनों अंशों की निरपेक्ष पूर्णता में पूर्ण एवं पूर्ण का अहम इस प्रकार दोनों अंशों की निरपेक्ष पूर्णता में आत्म पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप पूर्ण ही बना रहता है। इसके अंदर में वस्तु जो की त्यों बनी रहती है, द्रव्य द्रव्य रूप रह जाता है, पर्याय पर्याय रूप रह जाता है, द्रव्य पूर्ण रहता है, पर्याय भी पूर्ण रहती है, दोनों की व्यवस्था बरकरार रखते हुए आत्मा की अनुभूति हो जाती है। जैसे शरीर के प्रत्येक अंग की पूर्णता ही शरीर की पूर्णता है, यदि शरीर के सभी अंग अधूरे हो तो सब अधूरे अंगों से एक पूर्ण शरीर को निष्पन्न नहीं हो सकता। आधा द्रव्य और आधा पर्याय, अंश द्रव्य और अंश पर्याय, ये दोनों मिलकर एक पूरी वस्तु हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार आधा द्रव्य एवं आधी पर्याय यह पदार्थ का स्वरूप नहीं, वरन पूर्ण द्रव्य एवं पूर्ण पर्याय यह पदार्थ का स्वरूप हो सकता है। वे बात को समझने आने वाली बात है, अपन आगे चलते हैं। वास्तव में ध्रुव को अंत मानने वाली श्रद्धा में पूर्णता की प्रतीति ही नहीं होगी। अब यहाँ से अपन वस्तु का विचार करें, क्या कहते हैं कि वास्तव में ध्रुव को अंत मानने वाली श्रद्धा, इस श्रद्धा में पूर्णता की प्रतीति ही नहीं होगी, क्योंकि उसने उसको अंत माना, तो अंत माना तो पूर्ण नहीं माना, अब पूर्ण नहीं माना तो पूर्ण की श्रद्धा ही नहीं हो। फल स्वरूप क्या होगा? फल स्वरूप अनुभूति में आनंद की निष्पत्ति ही नहीं होगी। यदि पूर्ण माना होता तो आनंद निष्पन्न होता, आनंद का जन्म होता, स्वसंवेदन होता, लेकिन ऐसा नहीं माना तो आनंद की निष्पत्ति ही नहीं होगी। वरन अंत अर्थात अपूर्ण की प्रतीति होने से सदा ही ऐसा लगता रहेगा कि आत्मा में अभी कुछ कमी है। निश्चय ही श्रद्धा आदि वृत्तियों का कार्य हो, ध्रुव आत्मा में कुछ करना नहीं, वरन उसे ध्रुव मात्र मानना होता है, तो फिर श्रद्धा का कार्य है। निश्चय ही श्रद्धा आदि वृत्तियों का कार्य ध्रुव आत्मा में कुछ करना नहीं, वरन उसे ध्रुव मात्र मानना होता है। तो किस तरह से मानता है? मैं ध्रुव हूँ, यही सम्यक दर्शन का स्वर है। मैं ध्रुव हूँ, यही सम्यक दर्शन का स्वर है। किसका प्रश्न है? कहने का मतलब यह है कि जब श्रद्धा यह कहती है कि मैं ध्रुव हूँ, तो बाकी जो भूमि की जो पर्याय है वो भी ध्रुव तरफ श्रद्धा को फॉलो करते हुए, श्रद्धा का पीछा करते हुए, श्रद्धा के साथ में स्वभाव की ओर झुकती हुई परिणत हो जाती है। क्योंकि जब सम्यक दर्शन होता है तो सिर्फ दर्शन गुण सम्यक हुआ, ज्ञान गुण सम्यक हुआ ऐसा नहीं, सभी गुणों का सम्यक परिणाम हो जाता है। सम्यक दर्शन की काया ध्रुव से ही निर्मित है, इसमें सर्वत्र ध्रुव ही पसरा है, अनित्यता उसमें है ही नहीं। देखिए क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन की काया ध्रुव से निर्मित है, जो निर्माण हुआ सम्यक दर्शन का वो काया ध्रुव की बनी हुई है, इसमें सर्वत्र ध्रुव ही पसरा है, सर्वत्र पूरा का पूरा ध्रुव पसरा हुआ है, ध्रुव फैला हुआ है, अनित्यता उसमें है ही नहीं। उसे विश्व में ध्रुव के अतिरिक्त अन्य सत्ता का स्वीकार ही नहीं है, इसका विश्व ही ध्रुव है। श्रद्धा आदि वृत्तियों का विश्व सिर्फ ही सिर्फ ध्रुव है, उसको ध्रुव का अहम कहे, उसको सम्यक दर्शन कहे, उसको मोक्ष मार्ग कहे, इसको धर्म की शुरुआत कहे, जो कुछ भी कहे, वास्तविकता यह है कि उनका जो अनुभूति जो होती है उसके अंदर में मात्र ध्रुव ध्रुव और ध्रुव बचता है, और उसका स्वर मैं ध्रुव हूँ यही सम्यक दर्शन का स्वर है। सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन नहीं बचता, सम्यक दर्शन के अंदर में ध्रुव का अहम नहीं बचता, सम्यक दर्शन के अंदर में मैं ध्रुव हूँ बस इतना ही बचता। सम्यक दर्शन के संदर्भ में बहुत कुछ चलता रहा है, ये सारी की भ्रांति, सारी की सारी भ्रांतियां जड़ मूल से इस बात से समाप्त हो जाती है। यदि दृष्टि में ध्रुव के अतिरिक्त अन्य सत्ता का भी स्वीकार हो तो दृष्टि का स्वभाव अहम होने के कारण उसे अन्य सत्ता में अहम होने बिना नहीं रहेगा, और यही अहम मिथ्या दर्शन है। ध्रुव सत्ता का अहम मैं ध्रुव हूँ इस तरह से होता है, और अन्य सत्ता का अहम भी मैं हूँ, चाहे वो शरीर को मैं माने चाहे अन्य पदार्थ को मैं अपना माने, लेकिन उसका स्वर उसके अंदर में मैं पना होता है और इसका नाम मिथ्या होता है। श्रद्धा में मेरा कोई नहीं होता, मेरा हो तो फिर वो ज्ञान का विषय हो जाता है, वो श्रद्धा का विषय नहीं रहता। श्रद्धा में सिर्फ और सिर्फ मैं पना रहता है, मेरी सत्ता ध्रुव है। देखिए वही बात आई, मेरी सत्ता ध्रुव है। सम्यक दर्शन को द्रव्य पर्याय का यह भेद भी बर्दाश्त नहीं है। मेरी सत्ता ध्रुव है, इतनी बात श्रद्धा को बर्दाश्त नहीं है। दृष्टि श्रद्धा का स्वरूप ही ऐसा है, उसे ज्ञान की तरह स्वपर का भेद करना नहीं आता, उसे तो अहम करना आता। ज्ञान जैसे स्वपर का भेद करता है, श्रद्धा ऐसा भेद नहीं करती, उसे तो अहम बस मैं हूँ, वो इतना अहम समर्पित करती हुई चली जाती है। मैं हूँ समर्पण करके चली जाती है, मैं हूँ समर्पण करके चली जाती है। अपर सत्ता में मैं हूँ इसका नाम मिथ्या दर्शन, ध्रुव सत्ता में मैं हूँ तो इसका नाम सम्यक दर्शन। बस इतनी सी बात है। अब वस्तु व्यवस्था इतनी स्पष्ट है कि वहां पे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। सौराष्ट्र के इसके लोक में कोई पर है ही नहीं, कोई पर है ही नहीं। श्रद्धा के लोक में कोई पर होता ही नहीं है, इसलिए श्रद्धा को अंगीकार हुआ। उसके पास में चक्षु नहीं होता, बलवान होती है लेकिन अंधी होती है। जहाँ कूदती है सब प्रतिशत कूद जाती है, स्वभाव में प्रवेश करती है तो मैं हूं करके चली जाती है। उसके लोक में कोई पर है ही नहीं, वह मिथ्या होती है, तब भी उसे सब स्वयं ही दिखाई देता है। पर में भी उसे स्वयं ही दिखाई देता है, क्योंकि अब अंधे को क्या स्व क्या पर, उसका जो कुछ भी हो स्व है। अहम करना तो अहम में तो जो है बस मैं हूँ। तब सम्यक होने पर तो उसकी परिधि में अन्य भावों का प्रवेश कैसे संभव है। और तो सम्यक दर्शन के घर में स्वयं सम्यक दर्शन के रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। सम्यक दर्शन के घर में स्वयं सम्यक दर्शन के रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। उसने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। कोना कोना सर्वस्व ध्रुव के लिए समर्पण कर दिया है, इसलिए उसका स्वर मैं ध्रुव हूँ, इसके अलावा कुछ निकलता ही नहीं। सौराष्ट्र के संत ने भाव के अंत के लिए ध्रुव का यह मंगल सूत्र लोक को दिया। सौराष्ट्र के इस संत ने भाव के अंत के लिए ध्रुव का यह मंगल सूत्र लोक को दिया। उन्होंने सम्यक दर्शन के जिस स्वरूप का अनुसंधान किया वह इस युग का एक आश्चर्य है। सम्यक दर्शन के इस सूक्ष्म एवं अद्भुत स्वरूप का इस युग को स्वप्न भी नहीं था। मैंने सम्यक दर्शन नामक कोई वस्तु ही बच नहीं पाई थी। वास्तव में श्री कांजी स्वामी इस युग में सम्यक दर्शन के आविष्कारता है, और यह भगवान का सम्यक दर्शन इस युग को उनका सबसे महान वरदान है। इसके स्वरूप का बोध उनके बिना संभवित ही नहीं था। सही में गुरुदेव ने सम्यक दर्शन का स्वरूप जिस तरह से प्रतिपादित किया, सही में ये ओम ध्वनि में जिस तरह से अनुभूति की बातें आती है ओम ध्वनि के माध्यम से, वो बात गुरुदेव के मुखारविंद से सुनने को मिले। सही में ये युग की सौभाग्य है कि गुरुदेव जैसे पुरुष आए, सम्यक दर्शन प्राप्ति का सरलतम सरल विधान बताया और भव का अंत करने वाला सम्यक दर्शन पूज्य गुरुदेव श्री का ही इस युग को वरदान है। इनके स्वरूप का बोध उनके बिना संभवित ही नहीं था। उन सत्पुरुष ने सम्यक दर्शन के संबंध में प्रचलित सभी भ्रांतियों को प्रस्तावित कर दिया। कोई कहते थे कि सच्चे देव गुरु धर्मों की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, तो कोई सात तत्वों की श्रद्धा, किसी ने तो यहाँ तक कहने का दुस्साहस कर दिया कि जैन कुल में जन्म ही सम्यक दर्शन है। कहीं से आवाज आई कि सम्यक दर्शन काल लब्धि आने पर अपने आप होता है, इसके लिए पुरुषार्थ अपेक्षित नहीं है और उत्पन्न हो जाने पर भी स्वयं को उसका पता नहीं चलता। किंतु उन महापुरुष ने रहस्य उद्घाटन किया कि इनमें से एक भी सम्यक दर्शन नहीं है। इन सबकी समग्रता में भी प्रचंड अंतर पुरुषार्थ के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। यह भी नितांत असत्य है कि सम्यक दर्शन होने पर स्वयं को उसका पता नहीं चलता। सम्यक दर्शन का उद्भव होने पर साधक को निज शुद्ध चैतन्य सत्ता के लिंगता में अतिंद्रिय आनंद का प्रत्यक्ष संवेदन होता है, क्योंकि आत्मा की अनुभूति का लक्षण ही है स्वसंवेदन। जैसे जीव का लक्षण उपयोग है, त्रिकाली ग्रोह का लक्षण परम प्राणालिक भाव है, ऐसे अनुभूति का लक्षण स्वसंवेदन है, परिणामी का लक्षण स्वसंवेदन है। तो कहते हैं सत्य स्वसंवेदन होता है, आगम का अक्सर अक्सर इसका साक्षी है। उन संत ने सम्यक दर्शन के इस निश्चय पक्ष का ही विवेचन नहीं किया, वरन उसके व्यवहारिक पक्ष का भी प्रबल समर्थन किया। उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व अन्याय एवं अवध का सेवन नहीं करता, इसका लोक जीवन बड़ा पवित्र होता है। वह स्वप्न में भी अतत्व एवं असत्य का समर्थन नहीं करता, वही सच्चे देव गुरु धर्म का सच्चा उपासक होता है। जीवन में इस विशुद्ध के प्रादुर्भाव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। इनका जन्म पवित्र मनोभूमि में ही होता है। सम्यक दर्शन की गरिमा को गाते गाते वे संत विभोर हो जाते हैं। वे कहते हैं सम्यक दर्शन जीवन की कोई महान उपलब्धि है, वह जीवन तत्व एवं जीवन कला है। सम्यक दर्शन वह जीवन तत्व एवं जीवन कला है, उसके बिना जीवन मृत्यु का ही उपनाम है। ज्ञान में स्वपन का भेद समझने की क्षमता होने पर सम्यक दर्शन हर परिस्थिति में हो सकता है, हर परिस्थिति में हो सकता है। सातवें नरक की भयंकरता अथवा स्वर्गों की सुषमा उसमें बाधक नहीं होती। कर्मकांड के कठिन विधान उसकी उत्पत्ति में मदद नहीं करते, उसके घर नहीं छोड़ना है। उसे क्या करना, उसे घर नहीं छोड़ना है, देह का विसर्जन नहीं करना है, वरन घर एवं देह में रहकर ही उनसे अहम तोड़ना है। घर अपना हो नहीं सकता, देह अपना हो नहीं सकता, तो हुआ क्या? तो क्या आपने जो अहम किया था ये आपका दोष था, और कोई दोष नहीं है। शरीर में रहना दोष नहीं है, रागादि भाव दोष नहीं है, कर्मों का उदय दोष नहीं है, उसमें अहम करना मैं पना स्थापना ये दोष है। तो इस अहम को तोड़ना, पदार्थ को छूना भी क्योंकि आप छू नहीं सकते उसको, उसके अंदर में आपने अपनत्व किया तो अपनत्व को छोड़ना है, अपनत्व को तोड़ना है। इसलिए सम्यक दर्शन कठिन है, लिखा नहीं सकता। इसलिए सम्यक दर्शन सरल है, कठिन की कल्पना ही कठिनाई है। कौन कहता है कि सम्यक दर्शन कठिन है? आपको पढ़ने अहम छोड़ना है, तोड़ना है, और मैं परमात्मा हूँ ऐसा अहम करना, ये कठिन कैसे हो सकता है? जिसे छह पदार्थ की वस्तु व्यवस्था, दो पदार्थ की भिन्नता, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था, द्रव्य पर्याय का स्वभाव, अब समझ जाएंगे उसको भिन्नता क्यों ना पूछे, उसमें क्या परिश्रम हो सकता है, क्या कठिनाई हो सकती है। सुबह में सरलतम कहा था, यहाँ का इसलिए सम्यक दर्शन सरल है, कठिन की कल्पना ही कठिनाई है। सम्यक दर्शन अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति का दातत्व स्वीकार नहीं करता, इसलिए नरक एवं स्वर्ग के विषम वायुमंडल में भी मैं नारकी नहीं, मैं देव नहीं, वरन मैं तो अक्षय चैतन्य तत्व हूँ, ऐसे अविराम सचेतन में उसका जन्म हो जाता है। मैं नारकी नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं देव नहीं, ये तो हो गई नास्ती। मैं अक्षय चैतन्य सत्ता हूँ, ये हो गई अस्थि। अब इसका विश्वास हो जाए तो यही अहम है, यही सम्यक दर्शन है, और उसी के अंदर में स्वसंवेदन हो जाता है। दर्शन भी सम्यक, ज्ञान भी सम्यक, और उसमें स्थिरता हुई तो चरित्र भी सम्यक, आनंद आया तो स्वसंवेदन हो गया, सब एक साथ में एक समय में हो जाता है। कठिन की कल्पना ही कठिनाई है, ये बात को नोट किया जाए, क्योंकि मुक्त समाज को ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन बहुत कठिन है, बहुत पसीने बहाने पे भी होता नहीं है, कि आज घंटा एकांत में चिंतन मनन करने के बावजूद भी नहीं होता। तो ये जो नहीं होता है, ये जो उनका जो प्रश्न है ना, वो नहीं होने का कारण है, क्योंकि वो एकांत में भी मैं परमात्मा हूँ इसका आराम चिंतन के लिए नहीं बैठता, सम्यक दर्शन के लिए बैठता। तो उसका लक्ष्य तो सम्यक दर्शन, इसके लक्ष्य तो पर्याय के ऊपर है। अब इस पर्याय दृष्टि के अंदर में सम्यक दर्शन हो तो कैसे? जिसका लक्ष्य पर्याय है, जिसका लक्ष्य अध्रुव है, जिसका लक्ष्य अनित्य है, जिसका लक्ष्य आश्रव को टालना है, जिसका लक्ष्य समाज को प्रकट करना है, वो अपने को मोक्ष की मूर्ति क्यों मानता है? और मान लेता है तो शास्त्रों की दातों के कारण, निश्चय के दातों के कारण मान भी लिया, तो उसके अंदर क्या होता है? आपका अभिप्राय क्या रहा कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वे सम्यक दर्शन का स्वरूप ही नहीं है। मैं ध्रुव हूँ उसे सम्यक दर्शन कहते हैं ना, तो आपके अंदर में तो मैं ध्रुव में चलना चाहिए, अविराम चिंतन में, निरंतर चिंतन के अंदर में, प्रतीति के अंदर में, परिणति के अंदर में, उठते बैठते चलते सोते खाते जीते सब जगह ये चलना चाहिए कि मैं चैतन्य ध्रुव सकता हूँ, मैं चैतन्य ध्रुव सकता हूँ। देखिए, मैं देव नहीं, मैं नारकी नहीं, वरन मैं तो अक्षय चैतन्य तत्व हूँ, ऐसे अविराम संचेतन में उसका जन्म हो जाता है, जन्म किया नहीं जाता है, जन्म दिया नहीं जाता है, जन्म हो जाता है। सम्यक दर्शन होने वाली व्यवस्था है, ये सहज साध्य उनका मार्ग है। इसके अंदर में स्थिरता भी सहज, लीनता भी सहज, रमणता भी सहज, अनुभूति भी सहज, इसके लिए प्रयत्न नहीं होता, लेकिन जीव पुरुषार्थ करता है सम्यक दर्शन होने के लिए। तो मार्ग से उल्टा चल रहा है, अब मार्ग से उल्टा चलने से अनुभूति नहीं होती। जो अविकृत वस्तु चैतन्य ध्रुव विद्यमान सत्ता है, उसके अनुभव करने के लिए उसको करना कुछ नहीं है, पर का अहम तोड़ना है, सो में अहम करना स्थापना है, अरे कठिन कैसे हो सकता है? अब अपने आप को ध्रुव सत्ता नहीं मानता, चैतन्य सत्ता नहीं मानता, परमात्मा हूँ ऐसा नहीं मानता, ऐसा निर्णय नहीं करता, यथार्थ निर्णय नहीं करता। यथार्थ निर्णय हो तो पक्का निर्णय होगा, लेकिन ये यथार्थ निर्णय नहीं हुआ जिसका अंदर सम्यक दर्शन के कारण के ऊपर में लगा हुआ कि सम्यक दर्शन, वो ध्रुव का लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन होता है, ध्रुव की दृष्टि करने से, ध्रुव में अहम करने से अनुभूति होती है, उसको अनुभूति हो ही नहीं सकती, क्योंकि पर्याय दृष्टि है और पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि भी किसे कहते हैं? जिसके अंदर मैं द्रव्य हूँ उसमें द्रव्य की दृष्टि नहीं होती, मैं द्रव्य हूँ ऐसा होता, उसको हृदय की दृष्टि कहते हैं। कहने वाली बात की बादबाकी तरह इस विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसकी बादबाकी तरह, और जो मैं हूँ बस उसका स्वीकार करे, वहां पे अपनी भक्ति को देखे, अपना अस्तित्व को देखे, अपना होने पना को देखे, तो वहां पे स्थिरता होते ही अविराम संचेतन में, अब जो संचेतन कैसा होना चाहिए, अविराम संचेतन में इसका जन्म हो जाता है, इसलिए वह हर गति में होता है। इसमें सर्वोत्तम की जरूरत नहीं, धारणा की जरूरत नहीं, बुद्धि की जरूरत नहीं, एक स्थिर समुद्र के अंदर में असंख्य जलचर प्राणी सम्यक दृष्टि पंचम गुणस्थान होती, कौन सा शास्त्र अभ्यास कौन सा शास्त्र, इसलिए पसंद करता हूँ मैं, हालांकि मेरे जीवन से जुड़ा हुआ लेकिन गुरुदेव से सीधा सुना है। जब हम आज पढ़ते थे तब गुरुदेव के प्रवचन में तो सुनगढ़ गया तो बैठ ही जाते थे सामने, जैसे दीपक भाई बैठे रामदेव बापू जी के पास में, कुछ पता चले न चले बस एक घंटा गुरुदेव को देखते रहते, फिर प्रवचन पूरा होने का दो पांच मिनट बाकी और तब से वो नजर ये होती थी, बस गुरुदेव उठे उसके पीछे गए, लकड़ी दे चप्पल पहना, गुरुदेव मंदिर जाएंगे भक्ति में जाएंगे तो भक्ति के गुरुदेव की पुस्तकें लेके जाएंगे, तो जैसे प्रवचन से गुरुदेव बाहर निकलते पकड़ बाजू पकड़ के बोले प्रवचन में देखा वहां से क्यों आयु प्रवचन साहेब, आप भगवान आत्मा की बात करता है इसलिए खबर थी बीजी का ही नहीं। गुरुदेव जी का उत्तर यह था, भाई धर्म है ना बहु सारो बहु से लोग समझाए के हो, पर एक बात जीवन में याद रखना चाहिए। गुरुदेव को ताकते रहा क्या कौन सी बात, तो कहते नहीं याद नहीं रहे, चल रखा हुआ अपने रूम में ले गए और चश्मे की पेटी खोली, उसमें वो लाल पेंसिल अंडरलाइन के लिए रखते थे मोटी, वो पेंसिल दी सिंधु भाई को, बोला इनको एक कागज दो, कागज दिया बोले लखो सर्वोत्तम ये छेला मार चिल्ली अने मोटा में मोटी फसावानी जाड़ है, सर्वोत्तम ये छेला मार चिल्ली अने मोटा में मोटी फसावानी जाड़ है। अपने को स्वाध्याय सिर्फ प्रयोजन के विषय को चिपक के करना है। बैंकरी बेन ऐसा कहती थी कि आप स्वाध्याय करिए थे ना, कि ज्ञानी थवा माटे करिए थे, पंडित थवा माटे नहीं। अपने को सेवकम देखिए स्वाध्याय तो होना ही होना चाहिए, इसके अंदर में दो बात नहीं है, लेकिन होना किस तरह से चाहिए उसके अंदर वो बात जरूर है, कि जहाँ पे अपने भगवान आत्मा की सुधात्मा की ज्ञाय की मुख्यता रहे सर्वपरिता रहे, और हर बात से हम सुधात्मा पे आकर खड़े रहे, ज्ञाय के ऊपर आकर खड़े रहे, भगवान आत्मा के ऊपर आकर खड़े रहे, ऐसा हमारा स्वाध्याय होना चाहिए। क्योंकि जब ज्ञानी होने के लिए अपने को स्वाध्याय करना है तो श्रीमद जी ने सुखी दू आ उसकी अंदर मां फरता क्या माने हाथ लगी जाए तो आंखी में बांधी लेजिए नेकलो बच्चे ने निहारा करती, क्या मतलब है दुनिया से अस्तुरानी जी को दुनिया ने नहीं जाना, 20 साल तक सम्यक दर्शन के बाद में वो रहे दुनिया ने नहीं जाना, उसको क्या अंतर पड़ा, और उसकी लेखनी पे गुरुदेव ने उसको एकावतारी अपने से पहले सिद्ध जाने वाले हम नमः सिद्धेश्वर कहेंगे तो हमारे नमस्कार पूछे, ये सारी की सारी बात गुरुदेव ने कह दी। तो अपने को ये बात का ख्याल रखना है कि वस्तु स्वभाव से आगे पीछे नहीं होना, क्या कहता है इस युग में सम्यक दर्शन श्री गांधी स्वामी की एक ऐसी सोच है जिसने मृत्यु की ओर बढ़ते युग के चरण जीवन की ओर लौटा दिए, इस युग में सम्यक दर्शन श्री गांधी स्वामी की एक ऐसी सोच है जिसने मृत्यु की ओर बढ़ते युग को युग के चरण जीवन की ओर लौटा दिया, जैन दर्शन मृत्यु के युग के तरफ चला जा रहा फिर जीवन के तरफ लौटा दिया है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस संत ने सम्यक दर्शन में मृत्यु को ही मारकर विश्व के उसकी सत्ता ही समाप्त कर दी है। देखिए क्या गुरुदेव की महिमा, और किस तरह से बाबूजी ने गुरुदेव को भी अपनी जो अंजलि देनी थी अंजलि की तरह से दी, जिस युग के अंदर में मृत्यु को ही समाप्त कर दिया, माने जैन शासन को पंचम काल के अंत तक जीवंत रख दिया। सम्यक चरित्र का सौंदर्य, सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान की तरह पूज्य गुरुदेव ने चरित्र का भी एक प्राजन स्वरूप प्रस्तुत किया। वे चरित्र के महान उपासक हैं। चरित्र एवं दिगंबर संतों के अंतर्बाह्य स्वरूप का वर्णन करते करते वे अधाते नहीं है। सहस्त्र बार उनके अंतस्थल से ये उद्गार सहज ही निकल पड़ते हैं कि ऐसे वन विहारी नग्न दिगंबर वितराग संतों के दर्शन हमें कब प्राप्त हो, और वह अक्सर कब आवे जब उस आनंदमय लग्न दिगंबर दशा की हमें उपलब्धि हो। कुंद कुंद एवं अमृतचंद्र जैसे अनंत भावी संतों के चरणों में उनका मस्तक सदा नत रहता है। आनंद में जुटे दिगंबर संतों के हृदय के मन को आज वे ही पहचान पाए हैं। मुनि के बाह्य इन व्रतों में मुनि का आत्मा खो गया था। चरित्र को कठिन एवं कष्ट साध्य माना जाता था। चरित्र के महान उपासक की वाणी के माध्यम से चरित्र का सही स्वरूप आज निखरा है। कोरे शुभ अनुष्ठानों के काली कारण है चरित्र जैसे जीवन तत्व को उपेद करने के सभी प्रयत्न आज संत ने विफल कर दिए हैं। उन्होंने संत न फूका चरित्र, न तो घरबार आदि बाह्य संयोगों का वियोग मात्र है, और न कर्म कांड की छलांग है, न पर लग्न तो ही चरित्र है, न महाव्रत समिति आदि का पराश्रित सुभाषा उत्सर्ग एवं परिसर जेलना भी चरित्र नहीं, तो इंद्रियों का दमन एवं भयंकर का क्लेश भी नहीं, वरन स्वरूप में अंतर्लीन आनंद वृत्ति ही चरित्र है। मैंने ऊपर की जितनी भी बात बाबू जी ने लिखी उस समय चल रही थी, उसी को चरित्र माना जा रहा था, तो इसका खंडन करके स्वरूप में अंतर्लीन आनंद वृत्ति ही चरित्र है इस बात का चरितार्थ हुआ गुरुदेव जी का। श्री खांडी स्वामी ने चरित्र के अनिवार्य सहचर शुभाचार का भी, जिसे व्यवहार चरित्र कहते हैं, पूरा समर्थन किया। उन्होंने कहा शुभाचार जो मात्र मुंड कसाई की ही पर्याय है, उसे चरित्र मानना तो मिथ्या दर्शन है ही, किंतु वितराग चरित्र के अनिवार्य सहचर शुभाचार का तत्व ही स्वीकार न करना भी समान कोटि का मिथ्या दर्शन है। अब इसको कोई माने भी तो भी समान कोटि का सम्यक दर्शन, किसी को कोई सम्यक दर्शन चरित्र मान ले तो ये मिथ्या दर्शन, न माने तो भी मिथ्या दर्शन। मुनिकों की भूमिका में उग्र चरित्र के साथ रहने वाला शेष कटायन इतने मंद हो जाते हैं कि उनकी अभिव्यक्ति 28 मूलभूत रूप शुभाचार के रूप में होती है। अतएव श्री कांजी स्वामी कहते हैं कि यद्यपि नग्नता मुनित्व नहीं, किंतु मुनि नग्न ही होते हैं। अंतरंग परिग्रह के अभाव के साथ उनके तीर्थ मात्र भी बाह्य परिग्रह नहीं होता। मुनि का स्वरूप जमाने के अनुसार नहीं बदलता, वरन उनका त्रिकालिक स्वरूप एक ही होता है। उन्होंने व्यवहार चरित्र का बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण किया और कहा कि व्यवहार कोई चरित्र नहीं है, यानी स्वभाव जो है तो कोई चरित्र नहीं है, वरन वह तो अचरित्र भाव में चरित्र का आरोप मात्र है। गजब की बात है, व्यवहार तो यानी के स्वभाव यानी के 28 मूल समिति गुप्ती इत्यादि के जो परिणाम है, ये जो स्वभाव है व्यवहार स्वभाव, वो कोई चरित्र नहीं है, वरन वह तो अचरित्र भाव है। चरित्र व्यवहार चरित्र कहा जाता है, लेकिन है तो अचरित्र भाव, और उसमें चरित्र का आरोप मात्र है, वो चरित्र नहीं है। चरित्र किसको कहता है, स्वरूप में अंतर्लीन आनंद वृत्ति ही चरित्र है। हाँ, चरित्र का मल लिखा बराबर, क्योंकि अंतरंग विकास चैत्र के साथ वस्तु भाव भूमि नियम से होती है तथा वस्तु भाव भूमि के प्रकट हुए बिना वितराग चरित्र भी प्रकट नहीं होता। इसी अनुरोध से मंद कसाई रूप उस अचरित्र भाव को भी चरित्र कहने की एक पद्धति है और इस पद्धति को व्यवहार में कहते हैं। किंतु वस्तुतः चरित्र तो आनंदमय वितराग भाव ही है और वही मोक्ष मार्ग है। मंद कसाई रूप व्यवहार चरित्र चरित्र का विकार मात्र है, वह थोड़ा भी चरित्र नहीं है और सर्व ही बंद स्वरूप है। सम्य दृष्टि को जीवन में सदा ही चरित्र की प्रादुर्भाव की उग्र भावना प्रवर्तित होती है। मैं इसलिए पढ़ जाता हूँ कि सारी बात को गुरुदेव क्या कहते थे, गुरुदेव की मान्यता क्या थी, चरित्र के संबंध में गुरुदेव की क्या समझ थी, क्या प्रतिपादन था, ये बात का आलेख बाबू जी ने किया है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। उसे भले ही पुरुषार्थ की निर्बल गति के कारण चरित्र नहीं होता, किंतु वह कभी भी चरित्र के आनंदमय दृष्टि के प्रति उदासीन एवं प्रमादी भी नहीं होता। ये किसकी बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि की। सम्यक दृष्टि को जीवन में सदा ही चरित्र के प्रादुर्भाव की उग्र भावना प्रवर्तित होती है। उसे भले ही पुरुषार्थ की निर्बल गति के कारण चरित्र नहीं होता, किंतु वह कभी भी चरित्र के आनंदमय दृष्टि के प्रति उदासीन एवं प्रवादी भी नहीं होता। अतः निश्चित ही उसे भव अथवा भवांतर में चरित्र का उदय होता है। मोक्ष मार्ग की क्रमिक भूमिकाओं का उल्लंघन करके जल्दबाजी करने से चरित्र नहीं आता, वरन शुद्ध चैतन्य तत्व की उग्र भावना से ही जीवन में चरित्र का उदय होता है। शुद्ध चैतन्य तत्व की उग्र भावना से ही जीवन में चरित्र उदय होता है। श्रद्धा ज्ञान चरित्र का तो विशद विवेचन श्री गांधी स्वामी की वाणी में हुआ ही है, किंतु साथ ही जैन दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निश्चय व्यवहार निमित्त उपादान आरत दर्शन का प्राण अनेकांत आदि का जो अत्यंत प्रामाणिक अगम सम्मत एवं सतत प्रतिपादन हुआ है वह चित्त को चकित कर देता है। संभवतः जैन दर्शन का आधारभूत कोई सिद्धांत ऐसा नहीं है जिसमें उनके ज्ञान एवं वाणी का व्यवसाय नहीं हुआ हो। अध्यात्म का ऐसा सांगोपांग विवेचन तो शताब्दियों में नहीं हुआ। 42 वर्ष मैंने जब लेख लिखा गया था तब गुरुदेव के परिवर्तन को 42 वर्ष हुए थे। 42 वर्ष से अध्यात्म की बरसातें करती हुई उनकी प्रज्ञा ने अज्ञान की जड़ें हिला दी है। तीर्थंकरों एवं वितराग संतों के हृदय का मन खोल कर उन्होंने हमें तीर्थंकरों के योग्यता को पहुंचा दिया है। इनकी प्रज्ञा ने आगम के गंभीर रहस्य की छा लेकर जो मर्म निकाले है वही युग का एक आश्चर्य जैसा लगता है। वाणी का यह कमाल की 42 वर्ष की धारावाहिक प्रवचनों में कहीं भी पूर्वापर विरोध नहीं है। आत्म प्रसिद्धि नई प्रज्ञापन एवं अध्यात्म संदेश जैसी साहित्यिक निधियाँ उनकी निर्मल एवं प्रेमी प्रज्ञा के ऐसे प्रसव है जिन्हें देखकर आज के युग का बोधिक अहम उनके चरणों की धूल में घुसित होकर गर्व का अनुभव करेगा। उनके प्रवचनों से कल्पना की आध्यात्मिक साहित्य का सृजन हुआ है। शास्त्र क्रांति के विधि विधानों से भरे उनके आध्यात्मिक साहित्य ने भारत साहित्य का शीर्ष विश्व में ऊंचा किया है। वह साहित्य युग युग तक शांति के पिपासुओं को सच्ची शांति का दिशा निर्देशन करेगा। उन्होंने जिस आध्यात्मिक क्रांति को जन्म दिया है उसने युग के प्राण मोह के मुंह से निकाल दिए है। आज जन जन के श्वास प्रश्वास में अमरत्व का संचार होने लगा है। आज के तरफ जनजीवन को उनकी वाणी में सही राह एवं राहत मिली है। अतः निष्पक्ष दृष्टि से श्री कांजी स्वामी का युग भारतीय इतिहास एवं श्रवण संस्कृति का निश्चित ही एक स्वर्ण युग होगा। उन्होंने भारतीय इतिहास में एक बेजोड़ अध्याय जोड़ा है। वे उस क्रांति के उन्नायक महामानव है जिनका जन्म रक्त में नहीं विरक्त में होता है। जिस क्रांति के उदय में आत्म क्रांति का नहीं वरन मंगलमय क्रांति का संवर्धन करता है। लक्ष लक्ष मानवों ने उनकी इस शांति वाहिनी क्रांति का समर्थन किया और उसके सत्य को परख कर उसमें विकसित हुए है। आज लोग का यह स्वर कि यदि यह मुक्ति दूत नहीं होता, यदि यह मुक्ति दूत नहीं होता, यदि यह मुक्ति दूत नहीं होता तो हमारी क्या दशा होती। लोक हृदय की सच्ची अभिव्यंजना है। निसंदेह श्री कांजी स्वामी लोक मंगल्य की प्रतिष्ठा करने वाले एक लोक रक्षा एवं लोक रक्षा युग पुरुष है। इन मान पुरुष का अंतर जैसा उज्ज्वल है, बाह्य भी वैसा ही पवित्र है। इनकी अत्यंत नियमित दिनचर्या, सात्विक एक रूप एवं परिमित आहार, आगम समझ सत्य सभासद, करुण एवं सुकोमल हृदय उनके विरल व्यक्तित्व के अभिन्न अवयव है। जब लिखा गया था गुरुदेव की 87वीं जन्म जयंती थी, इसलिए लिख रहे 87 वर्ष के अति वृद्ध अवस्था में भी उनकी दिनचर्या इतनी नियमित एवं संयमित है कि एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। समयम गुरुम माप माए की वीरवाणी उनके जीवन में अक्सर से चरितार्थ हुई है। सुधात्म तत्व का विराम चिंतन एवं स्वाध्याय ही उनका जीवन है। जैन श्रावक के पवित्र आचार के प्रति वह सदैव सतर्क एवं सावधान है, इसका उल्लंघन उन्हें सहय नहीं है। इनका जीवन का प्रत्येक फल अनुकरणीय है। निश्चित ही वे इस जगत के वैभव है और युग इन्हें पाकर गौरवान्वित हुआ है। आज गुरुदेव श्री अपने बीच में नहीं होते हुए भी गुरुदेव श्री की वाणी जो अमरत्व को प्राप्त हुई है, उसका संदेश, मुक्ति का संदेश उसमें प्रसारित हो रहा है। तो आज गुरुदेव शाश्वत प्रत्येक रूप में हाजिर नहीं होने के बावजूद भी अक्सर देश हमारे सामने मौजूद है। पूज्य गुरुदेव श्री की यह वाणी युग को पंचम काल के अंत तक मिलती रहे और भावी जीव अपनी श्रद्धा को अपने स्वरूप के अंदर में एकाकार करते हुए अपन सबको पूज्य गुरुदेव श्री के चरण कमल में अत्यंत विनय पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक, सर्वार्पणता पूर्वक, समर्पणता पूर्वक, विवेक पूर्वक कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन।
अब चौथा लेख जो ज्ञान सभा का